लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के विभिन्न समूहों और कलीसियाई अभियानों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे प्रतिदिन अपने सुसमाचार प्रचार मिशन की पुनर्खोज कर विश्व के जरूरतमंदों की सेवा के प्रति अपने करिश्मे को समर्पित रखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम ने शुक्रवार 5 मई को COVID-19 महामारी की वैश्विक स्तर की एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा के रूप में समाप्ति की घोषणा की। उन्होंने इस मौके पर दुनिया भर में स्वास्थ्य और देखभाल कर्मियों के असाधारण कौशल और निस्वार्थ समर्पण के लिए भी विशेष आभार व्यक्त किया। हालांकि उन्होंने बृहद आशा व्यक्त करते हुए ये भी जोर दिया है कि ये महामारी अब भी एक वैश्विक खतरा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिनमें तालमेल, समता और एकजुटता का अभाव शामिल है, जिसका मतलब है कि वायरस का मुकाबला करने के लिए मौजूदा उपकरण और प्रौद्योगिकों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग नहीं किया गया। अतः हम खुद से, अपने बच्चों से और आने वाली पीढ़ियों से ये वादा करें कि हम इस तरह की गलतियां नहीं दोहराएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने शुक्रवार को जिनेवा स्थित मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वायरस अभी कुछ समय तक यूं ही मौजूद रहने वाला है। उन्होंने बताया कि गत सप्ताह COVID-19 के कारण हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही थी और ये केवल वो मौतें हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि ये वायरस अब भी जानलेवा है और ये अब भी अपने रूप बदल रहा है। इस वायरस के नए वेरिएंट्स उभरने का जोखिम अब भी बरकरार है, जिनसे संक्रमण मामलों और मौतों में बढ़ोतरी होती है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा,
फॉर मोर देन अ ईयर द पैंडेमिक हैज बीन ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड विद पॉपुलेशन इम्यूनिटी इंक्रीजिंग फ्रॉम वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शन।
पिछले 12 महीनों के दौरान महामारी का रुख नीचे की ओर रहा है। उच्च प्रभावशीलता वाली वैक्सीन के कारण स्वास्थ्य क्षमता बढ़ी है, संक्रमण व मृत्यु दर में कमी हुई है और स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ कम हुआ है। नीचे जाने वाले इस रुख की बदौलत बहुत से देश COVID-19 के पहले के समय का सामान्य जीवन बहाल करने में सक्षम हो सके हैं। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस के शब्द। संगठन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक इस महामारी से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 76.5 करोड़ है, जिनमें लगभग 70 लाख लोगों की मौत हुई है। ध्यान रहे कि UN स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख ने कोरोना वायरस महामारी को 30 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया था।
सूडान की राष्ट्रीय सेना और अर्धसैनिक बल RSF के बीच गत 15 अप्रैल से लड़ाई भड़की हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस लड़ाई के कारण अभी तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सूडान में देश के भीतर अब तक 3,30,000 लोग विस्थापित हुए हैं और 1,00,000 से अधिक लोग देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और साझेदार संगठनों ने सूडान में हिंसक टकराव के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की मदद के लिए $44.5 करोड़ की अपील जारी की है। देश में गंभीर स्थिति बनी हुई है, ऐसे में बहुत से देशों ने सूडान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए अभियान चलाए हैं। इनमें भारत का कावेरी अभियान भी शामिल है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रही है शिवानी काला।
UN शरणार्थी एजेंसी ने अपने साझेदारों के साथ मिलकर एक आपात योजना लागू की है, जो कि सूडान के सीमावर्ती देशों में पहुंच रहे लोगों पर लक्षित है। लड़ाई से जान बचाकर देश से निकलने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 8,60,000 तक हो जाने की संभावना है और उनके लिए अक्टूबर महीने तक सहायता सुनिश्चित करने के लिए ये अपील जारी की गई है। इस सहायता धनराशि के जरिए चाड, दक्षिण सूडान, मिस्र, इथियोपिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में विस्थापितों के लिए राहत सुनिश्चित की जाएगी। सूडान में शीर्ष सैन्य नेतृत्व के बीच जारी घातक सत्ता संघर्ष से देश में गंभीर स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बहुत से देशों ने सूडान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के अभियान चलाए हैं, जिनमें भारत का कावेरी अभियान भी शामिल है। इस अभियान के तहत 3,500 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सूडान से सुरक्षित बाहर निकालकर स्वदेश पहुंचाया गया है। इन्हीं भारतीय नागरिकों में से एक हैं राजस्थान के रघुवीर शर्मा, जिन्होंने दिल्ली पहुंचने पर यूएन न्यूज की अंशु शर्मा के साथ बातचीत में सूडान के भयावह हालात का आंखों देखा हाल सुनाया।
आरएसएफ एक संगठन है पैरामिलिट्री का, उसने एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया था। तो कब्जा करने के बाद में वहां पे आपस में गोला बारूद फाइटर जेट से हमले होने लगे थे। पूरे खार्तूम में ऊपर से पहले रेकी की जाती थी और फिर मिसाइलों से फाइटर जेट से गोला बमबारी स्टार्ट हो गई थी। 17 तारीख को कुछ लोकल वहां के आरएसएफ वाले जो हमारे गेस्ट हाउस के अंदर घुसे थे, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए, ओपन फायरिंग करते हुए गेस्ट हाउस को लूटा और हमारे पास आ गए। हमारे साथी को बंधक बना लिया गया था वहां पे। हम साथी को छुड़ाने के लिए गए वहां पे और जितना भी हमारे पास केस था, मोबाइल था और जितने भी लैपटॉप वगैरह सारे उसको दिए और गाड़ियों की चाबी दी और उनको रवाना किया। फिर वो वापस आते घंटे घंटे पर में वो वापस आते रहते थे वहां पे और कुछ ना कुछ लूट के लिए जाते थे। हमारे पास जब तक 10-12-15 गाड़ियां थी तब तक हमारी जान सलामत थी। हम वो आते और गाड़ी दे देते थे और यही सिलसिला चलता रहा। फिर 23 तारीख को इंडियन एम्बेसी की बस हमारी कंपनी में आई और हमें वहां से जद्दा पोर्ट सूडान के लिए रवाना किया। पोर्ट सूडान पे हमें इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी का सपोर्ट मिला और वहां से हम निकलने में कामयाब हुए।
संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ईरान के जेलों में बंद 3 महिला पत्रकारों को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। इन महिलाओं की पत्रकारिता ने पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भड़का दिए थे। ये पुरस्कार प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। यूनेस्को गिलर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1997 में की गई। यह पुरस्कार हर साल किसी ऐसे व्यक्ति, संगठन या संस्था को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए असाधारण योगदान किया हो, विशेष रूप से खतरनाक परिस्थितियों में। यह पुरस्कार कोलंबियाई पत्रकार गिलेर्मो कैनो इसाजा के सम्मान में नामांकित किया गया है, जिसने 17 दिसंबर 1986 को बोगोटा स्थित एक समाचार पत्र एल एस्पेक्टादोर के कार्यालयों के सामने मार दिया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
इन 3 ईरानी महिला पत्रकारों नीलूफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को इस पुरस्कार के लिए ऐसे समय में चुना गया है जब महिला पत्रकार लगातार खतरों का सामना कर रही हैं। इन महिलाओं की पत्रकारिता ने पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भड़का दिए थे। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजूले ने कहा है कि आज के समय में उन सभी महिला पत्रकारों को सम्मानित करना अति महत्वपूर्ण है जिन्हें अपना काम करने से रोका जा रहा है और जो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा पर जोखिमों व हमलों का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम आज सत्य और जिम्मेदारी के प्रति उनके समर्पण का सम्मान कर रहे हैं। मीडिया विशेषज्ञों के एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल की सिफारिश पर इन 3 महिला पत्रकारों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पैनल की अध्यक्ष जैनब सलबी ने कहा है कि हम ईरानी महिला पत्रकारों के साहसिक काम को सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनकी पत्रकारिता ने महिलाओं के नेतृत्व वाली एक ऐतिहासिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
See you. तेरी हो जय जय
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जा मेलोनी के साथ वेटिकन आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि जन्म दर का विषय सभी के लिए केंद्रीय है, विशेष रूप से इटली और यूरोप के भविष्य के लिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। रोम के कंसिलियाज़ोने रंग भवन में 11 और 12 मई को इटली में जन्म दर की सामान्य स्थिति पर विचार विमर्श हेतु कई राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक एक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अब तक इटली में गिरते जन्म दर को जनसंख्या की सर्दी, खाली पलने आदि कई परिभाषाएं दी जा चुकी हैं। 2015 में शुरू हुई जनसांख्यिकीय गिरावट को कोविड-19 महामारी के प्रभावों से और अधिक बल मिला है। शुक्रवार को साक्षात्कार के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने उक्त सम्मेलन के प्रतिभागियों से कहा कि दरअसल लोगों की आशा को मापने के लिए बच्चों का जन्म मुख्य संकेतक है। यदि जन्म दर कम होती है तो इसका मतलब है कि उम्मीद कम है और इसका न केवल आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से असर पड़ता है बल्कि भविष्य के प्रति विश्वास की कमी उत्पन्न हो जाती है। इस तथ्य पर उन्होंने चिंता व्यक्त की कि विगत वर्ष इटली जन्म के मामले में सबसे निचले स्तर पर रहा। 2022 में इटली में केवल 3,93,000 नवजात शिशु पैदा हुए जबकि 7,00,000 लोगों का निधन हुआ। संत पापा ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि आज बच्चों को दुनिया में लाना एक पारिवारिक व्यवसाय माना जाता है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश यह युवा पीढ़ी की मानसिकता को प्रभावित कर रहा है जो निराशा और भय में नहीं तो अनिश्चितता में विकसित होते हैं। वे एक ऐसे सामाजिक माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं जिसमें एक परिवार शुरू करना एक साझा मूल्य के बजाय एक अति कठिन प्रयास में बदल रहा है। संत पापा ने कहा कि स्वतः को अकेला महसूस करना और पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना खतरनाक है। इसका मतलब है धीरे धीरे सामान्य जीवन को खत्म करना और खुद को अकेले अस्तित्व में रखने के लिए बाध्य होना जिसमें हर किसी को खुद के लिए सोचना पड़ता है। परिणाम स्वरूप केवल सबसे अमीर ही प्राप्त संसाधनों की वजह से अपने जीवन को आकार दे पाते हैं। उन्हें चुनने की अधिक स्वतंत्रता होती है जो कि अन्यों के प्रति अनुचित और साथ ही अपमानजनक भी है। संत पापा ने कहा कि युद्धों, महामारियों, बड़े पैमाने पर विस्थापन और जलवायु संकट के बीच इस समय शायद पहली बार भविष्य अनिश्चित लग रहा है। संत पापा ने कहा कि वास्तव में आज की द्रुत गति उस नाजुकता को बढ़ाती है जिसे हम अपने भीतर ढोते हैं। अनिश्चितता और नाजुकता का माहौल युवा पीढ़ियों को अनिश्चितता की भावना से परिपूर्ण करता है जिससे आने वाला कल उनके समक्ष एक असंभव पहाड़ जैसा दिखता है। स्थायी रोजगार खोजने में कठिनाई, उसे बरकरार रखने की कठिनाई, निषेधात्मक रूप से महंगे आवास, आसमान छूते किराए और अपर्याप्त मजदूरी वास्तविक समस्याएं हैं जो राजनीति को चुनौती दे रही हैं। अस्तु उन्होंने कहा दूरदर्शी नीतियों की सख्त जरूरत है। हमें एक नए वसंत के खिलने और इस जनसांख्यिकी सर्दी को पीछे छोड़ने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करने की जरूरत है। इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि समाज और भविष्य के लिए जन्म दर की समस्या सबकी समस्या है। इसलिए वैचारिक बाधाओं और पूर्व कल्पित स्थितियों के बिना एक साथ समस्या का सामना करना आवश्यक है। संत पापा फ्रांसिस ने पोप तावाद्रोस द्वितीय के साथ घोषणा की कि 21 कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स शहीदों को दोनों ख्रिस्तीय कलीसियाओं की आध्यात्मिक एकता के संकेत रूप में कैथलिक कलीसिया की शहीद सूची में स्थान दिया जाएगा। गुरुवार को वेटिकन में कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स पोप तावाद्रोस द्वितीय के साथ मुलाकात के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने दोनों कलीसियाओं के बीच पूर्ण एकता की मंशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, कॉप्टिक शहीदों की प्रार्थना हमारी कलीसियाओं की मैत्री को बढ़ाने में मदद करना जारी रखे, ताकि हम एक ही वेदी पर उद्धारकर्ता येसु क्रिस्त के शरीर और रक्त का समारोह एक साथ मना सकें। संत मार्कुस की पवित्र प्राधिधर्माधीक्षीय पीठ के आध्यात्मिक गुरु पोप तावाद्रोस द्वितीय ने पिछले 3 दिन रोम में संयुक्त ख्रीस्त शास्त्री घोषणा की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए व्यतीत किए। यह संयुक्त घोषणा कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया और कैथलिक कलीसिया दोनों के बीच संबंधों में एक मील का पत्थर है। अपने संबोधन में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि 21 ऑर्थोडॉक्स शहीदों को हमारी दो कलीसियाओं को एकजुट करने वाली आध्यात्मिक एकता के संकेत रूप में कैथलिक कलीसिया की शहीद सूची में स्थान प्रदान किया जाएगा। इन 21 कॉप्टिक ख्रिस्तियों को कथित इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा 2015 में लीबिया में मार डाला गया था। इनमें से 20 मिस्र के थे और 1 घाना के। इन ख्रिस्तियों की हत्या के बाद उक्त आतंकवादी संगठन द्वारा प्रकाशित एक वीडियो में मरते वक्त इन शहीदों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया था। कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया 15 फरवरी को इन शहीदों का स्मृति दिवस मनाती है। इसी दिन अपने विश्वास के खातिर ये शहीद हो गए थे। विश्वव्यापी कैथलिक लोकोपकारी संगठन कारितास इंटरनेशनल की महासभा में भाग ले रहे राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के लिए गुरुवार को अखंड मानव विकास हेतु गठित परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल माइकल सेरनी ने ख्रीस्त्याग अर्पित किया तथा जरूरतमंद लोगों की सेवा में एक साथ काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। रोम में 11 से 16 मई तक कारितास इंटरनेशनल की महासभा जारी है। संत पेत्रुस महागिरजाघर में ख्रीस्त्याग के अवसर पर प्रवचन करते हुए कार्डिनल सेरनी ने कारितास के सदस्यों और स्वयं सेवकों से आग्रह किया कि वे घमंड और खुद को दूसरों से ऊपर रखने की इच्छा के प्रलोभन से बचें तथा प्रेम को अपने जीवन में सबसे आगे रखें। यूरोपीय कैथेड्रल माल्टा 2023 संरक्षण और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन शीर्षक के अंतर्गत आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन पर गुरुवार को वेटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने कहा कि कलाकारों ने हमेशा से ही कलीसिया को अपने दिव्य संदेश को दृश्यमान भाषा में अनुदित करने में मदद प्रदान की है। कला और आध्यात्मिकता के बीच गहन संबंध को बरकरार रखने और तकनीकी लोकतांत्रिक प्रतिमान के सीमित क्षितिज के विपरीत सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की उन्होंने अपील की। यूरोपीय कैथेड्रल माल्टा 2023 संरक्षण और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन सम्मेलन माल्टा के सेंट जॉन्स महागिरजाघर में शुक्रवार तक जारी रहेगा। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।